नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। नोएडा में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन हुआ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दो बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान संयंत्र स्थापित करने के लिए अध्ययन शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलीपुर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कमेटी चेयरमैन कार्यालय का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार खिलाड़ियों के लिए परिश्रम, त्याग और समर्पण को विश्व पटल तक पहुंचाने के लिए संकल्पित। अब समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली से सटे नोएडा में देश के पहले मोबाइल फोन टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि टेम्पर्ड ग्लास का स्वदेश में उत्पादन मेक इन इंडिया की सफलता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण 6 गुना बढ़कर 11.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात शामिल है और 25 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है।
नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है।
श्री वैष्णव ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देने की अपील की। ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने नोएडा संयंत्र अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से स्थापित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अलीपुर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कमेटी चेयरमैन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह कार्यालय सुशासन का प्रतीक है और जनता को समर्पित है।
सुशासन के प्रतीक होते हैं डीएम ऑफिसेज। उन सभी डीएम ऑफिसेज को एक्टिवेट करने के लिए सरकार ने इनिशिएट किया और जो फाइनेंशियल उनकी इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए उन सब पे उनको मजबूत किया। हमारा विजन ये है कि हम अपने मिनी सचिवालय बनाएं अपने 11 डिस्ट्रिक्ट में। इनफैक्ट इन 11 डिस्ट्रिक्ट को भी हम एमसीडी के 12 जोन के इक्विवेलेंट पूरा उनकी बाउंड्रीज को करने जा रहे हैं। इस तरह का पूरा एक सुशासन का माहौल हम दिल्ली में लाना चाहते हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया और दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अलीपुर में दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में स्वच्छता कर्मियों की निस्वार्थ सेवा वास्तव में राष्ट्र निर्माण का कार्य है। श्रीमती गुप्ता ने शहरवासियों से राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने की भी अपील की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के अवसर पर शिल्पकारों, कारीगरों और लघु उद्यमियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास में लघु उद्योगों का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोत हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ लघु उद्योग आज आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था में लघु तथा कुटीर उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये उद्योग परंपरागत कौशल, सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज मसूदपुर, बिजवासन और द्वारका में 5 एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने द्वारका सेक्टर 29 और बिजवासन में डॉग शेल्टर सेंटर बनाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि निगम का उद्देश्य दिल्ली में पशु कल्याण और नागरिक हित दोनों के लिए प्रभावी कदम उठाना है ताकि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या पर नियंत्रण हो सके और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार भी सुनिश्चित हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में दो बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान संयंत्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के लगभग 10,000 से अधिक स्वास्थ्य संगठनों से प्रतिदिन निकलने वाला 40 मीट्रिक टन कचरे के निपटान के लिए मौजूदा क्षमता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि नए संयंत्र से यह क्षमता बढ़ेगी। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में राजौरी गार्डन ट्रेडर्स मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं की जानकारी दी और बाजार व्यवस्था को मजबूत करने तथा व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। यह आयोजन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में हुआ। श्री सचदेवा ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस और उनके गठबंधन के मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश भर की महिलाओं का अपमान है। श्री सचदेवा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए अपशब्द बोले जाते हैं, ये देश की हर महिला का अपमान है। जिस तरह की बात राहुल गांधी के मुझसे की गई है, कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खुद माँ है, उनको ये बात सोचनी चाहिए, इस तरह की भाषा कौन बोलता है। लेकिन कांग्रेस एक डिवीजन की राजनीति कर रही है, बार बार इस तरह की बातें उनके मन से आती हैं और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी माफी नहीं मांग लेते, हम यहाँ उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे।
17वां CII ग्लोबल मेडटेक सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका विषय था विश्व समुदाय के स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार और भारत में निर्माण। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नव प्रवर्तकों और नीति निर्माताओं ने भारत में चिकित्सा तकनीक के भविष्य पर चर्चा की। इस अवसर पर यूनियन फार्मास्यूटिकल्स के सचिव अमित अग्रवाल ने कहा कि दुनिया भर के देश अब भारत को चिकित्सा नवाचार के मामले में अग्रणी देश के रूप में भी देख रहे हैं। उन्होंने नवाचारियों, उद्यमियों और निवेशकों से आग्रह किया कि वो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सरकार का सहयोग करें। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार MRI, सिटी स्कैन मशीन, मेमोग्राफी इकाइयों, वेंटिलेटर, स्टेंट डायलिसिस मशीन, हृदय के वॉल्व और प्रत्यारोपण उपकरणों का निर्माण अब देश में ही हो रहा है। सरकार देश में ही चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए 3 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित कर रही है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 7.8% है और इसका ऊर्जा खपत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की खपत वैश्विक अनुपात में 3 गुना अधिक है और सरकार शोधन क्षमता को मजबूत करने तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री पुरी ने कहा कि बढ़ती GDP दर भारत की आर्थिक स्थिति पर उठाए जा रहे सवालों का करारा जवाब है।
हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 trillion की थी, 11वें स्थान पे थे विश्व भर में, हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज 4थे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है GDP विश्व भर में 30वें स्थान पे आएगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में एक ड्रोन निर्माण कंपनी और इंजन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्धों में ड्रोन की अहम भूमिका है। श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल से क्षेत्र में 5,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दृढ़ संकल्प, विज्ञान और साहस का परिणाम है।
भारत अब तकनीकी दृष्टि से किसी भी देश से पीछे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हम सबने देखा, जब संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारे सेना के जवानों की वीरता की कहानी है तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं के इनोवेशन यानी नवाचार की भी कहानी है।
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सभी राज्यों को सफाई में तेजी लाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सफाई ऐसी होनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखे भी। शहरी इलाकों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की वर्चुअल बैठक में श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता और शहरी विकास परस्पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने शहरी विकास और नीति कार्यान्वयन के वाहक के रूप में सफाई लक्ष्य इकाइयों CTU की भी चर्चा की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने शहरी भूमि की समयबद्ध सफाई की रूपरेखा तैयार की है जिसकी नियमित समीक्षा होगी। इस कार्य में नागरिकों और स्वच्छता ऐप के माध्यम से गहन निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि CTU का उद्देश्य अस्वच्छ स्थानों को सुंदर स्थानों में परिवर्तित करना है। पंजाब में पहाड़ी इलाकों से पानी का भारी प्रवाह राज्य के लिए मुसीबत बन गया है क्योंकि रावी नदी अब तक 14.11 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आ चुका है। इससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पंजाब में अगले 3 दिनों तक कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की मौसम संबंधी चेतावनी लोगों के साथ साथ राज्य की सरकार के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इस बीच अमृतसर से अजनाला के रामदास इलाके में भी प्रभावित हो रहे हैं। घग्गर नदी के उफान ने पटियाला जिले के कुछ इलाकों में भी समस्या पैदा कर दी है। फिर भी स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि सेना, भारतीय वायुसेना, NDRF, SDRF, पंजाब पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों सहित सभी एजेंसियों फंसे हुए लोगों को निकालने और उन्हें बचाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। उन्हें राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण को विश्व पटल तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। आज दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय खेल ढांचा, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, लगातार सहयोग और खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये तक की पुरस्कार राशि के साथ साथ सरकारी सेवा के माध्यम से सम्मान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर आधारित है जिसमें दिल्ली के खेलों को आगे बढ़ाना, दिल्ली में खिलाड़ियों को नए मौके देना, नए आयाम देना और उसमें दिल्ली सरकार की भूमिका उस पे काम करना, ये हमारा लक्ष्य है। और हम ये समझते हैं कि आज उनको नए पंख, नए उड़ान देने की जरूरत है और दिल्ली सरकार निश्चित रूप में ये काम करेगी।
दिल्ली प्रीमियर लीग में आज क्वालिफायर 2 के मैच में ईस्ट दिल्ली राइडर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस आमने सामने हैं। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन हुआ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2 बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान संयंत्र स्थापित करने के लिए अध्ययन शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलीपुर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कमेटी चेयरमैन कार्यालय का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली सरकार खिलाड़ियों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को विश्व पटल तक पहुंचाने के लिए संकल्पित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।